प्यारे दोस्तों नमस्कार। AFEIS के 24 सितंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने आपसे एक वायदा किया था कि यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई तो कल मैं जो कॉरपोरेट टैक्स पर आपसे बातें कर रहा था उसी टॉपिक को आज भी कंटिन्यू करना चाहूँगा और डेफिनेटली आज का जो मुख्य विषय है वो कल के ही कंटिन्यूएशन में कॉरपोरेट टैक्स है। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स कल जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ है शायद उसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पर था, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब टेलीकास्ट शायद नहीं, टेलीकास्ट तो हुआ ही, शायद आप लोगों ने उसके कुछ अंश देखे होंगे। इसका नाम है UN क्लाइमेट एक्शन समिट, यानी कि ये UN के नेतृत्व में हो रहा है। जब UN के नेतृत्व में होता है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इसमें शिरकत कर रही है, भाग ले रही है और इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इनफैक्ट सच पूछिए तो ऑन द बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड लिए जाएंगे, यानी कि ये माना जाएगा कि दुनिया निर्णय ले रही है। इसमें देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है एक्शन। अभी तक जो सम्मेलन होते थे उसमें बातचीत होती थी, प्रस्ताव पारित किए जाते थे, ये किया जाना चाहिए इसके बारे में कहा जाता था, लेकिन यहां है एक्शन, यानी कि बातें बहुत हो गई हैं और अब वक्त आ गया है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, राइट? तो जलवायु कितना बड़ा मुद्दा हमारे दुनिया के लिए हो गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, केवल हमारे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए हो गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन के लिए एक्शन पर बात करती है या देखती है तो भारत की सराहना करती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप पाएंगे कि भारत ने इसके लिए बहुत कदम उठाए हैं, जबरदस्त कदम उठाए हैं। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भी हम लोगों ने वायदा किया है कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसको प्रधानता देंगे, हमने टारगेट फिक्स किया है। इसके बाद आप देखिए चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए दो बातें खासकर कही कि हम मिशन जल जीवन शुरू करने वाले हैं। मिशन जल जीवन शुरू करने वाले हैं क्या? शुरू कर दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक अभी 2 अक्टूबर से उस पर बैन करने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं। और इससे भी जो बड़ी बात उन्होंने कही है, दो बातें कही, और मुझे लगता है कि शायद जलवायु परिवर्तन पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके केंद्र में ये दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि अब जलवायु परिवर्तन के बारे में कार्रवाई की जानी चाहिए, खैर चलिए सबमिट का विषय ही यही था। दूसरी बात उन्होंने जीवन शैली के बारे में कही है कि हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है कि वो जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण बन गई है, जिसमें प्लास्टिक का यूज भी एक बहुत है, फिर हम दुनिया भर के गैस उत्सर्जित कर रहे हैं वो हमारे जीवन शैली के कारण ही हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जीवन शैली में परिवर्तन ला करके हम इस जलवायु परिवर्तन को काफी कुछ सीमा तक रोक सकते हैं। अब आप देखिए कि जब आप जीवन शैली की बात करते हैं दोस्तों तो ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है, या कह लीजिए कि दुनिया को देन है कि वो शुरू से जीवन शैली को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे यहां तो पृथ्वी सूक्त जैसा पूरा का पूरा अध्याय है, पृथ्वी सूक्त, जिसमें पृथ्वी के प्रति हमने अपना निवेदन व्यक्त किया है, प्रार्थना की है, और आप देखिए कि उसमें किस तरीके से कहा गया है कैसे हम पृथ्वी पर शांति बनाए रखें, पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखें। और आपने शायद ये श्लोक तो सुना ही होगा, पृथ्वी है शांति, जल है शांति, और इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष शांति। कल्पना करके देखिए कि उस समय के हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उनकी मेधा कितनी प्रबल थी, कितनी दूर तक वो देख सकते थे। कुल मिलाकर यह कि जलवायु परिवर्तन के बारे में अब भारत एक सच पूछे तो लीडरशिप के रोल में आ गया है। तो इसलिए इस विषय पर, इस टॉपिक पर जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिलता हो आप उसे नोट कर लें, उसे ध्यान से देखें, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुए हैं उसमें जलवायु परिवर्तन पर बहुत ही व्यावहारिक किस्म के प्रश्न पूछे गए हैं, कभी बाद में हम लोग उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों इसी सम्मेलन में मैंने उसका टेलीकास्ट के कुछ अंश देखे। एक लड़की आई थी जो मात्र 16 साल की है और उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग, ये नाम याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये स्वीडन की रहने वाली है, ग्रेटा थनबर्ग। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जिस अंदाज में अपनी बात रखी वो उसका अंदाज बहुत गलत, मतलब गजब का अंदाज था, और साथ ही लग रहा था कि वो इमोशनली जोश में है और साथ ही साथ आक्रोश में भी है। वो पूरी दुनिया के नेताओं से पूछ रही है कि आप लोगों में इतना साहस कैसे हुआ कि आप प्रकृति को बर्बाद कर देंगे, हम युवा पीढ़ी के लोग हैं, हमारे लिए आप क्या छोड़ करके जा रहे हैं, और आप अपने दायित्वों से बच नहीं सकते हैं, आपको ये करना होगा। मतलब बहुत गजब का भाषण था। 16 साल की लड़की यूएन सबमिट में बोल रही है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। सच पूछिए तो उस लड़की को दोस्तों सलाम है, ग्रेटा थनबर्ग, ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जलवायु सम्मेलन एक बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए कि टॉपिक है जो अभी आपके यूएनओ का अमेरिका में हुआ है, और आप देखिए इसके महत्व को थोड़ा सा आप इससे भी जज करके देख सकते हैं कि पेरिस जलवायु सम्मेलन से जो हम ट्रंप जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हम इससे बाहर हैं, लेकिन इसमें वो अचानक आ गए थे। हालांकि वो 10-15 मिनट ही रुके, उन्होंने कोई उद्बोधन नहीं दिया, वो आए और फिर चले गए, और बाद में बकायदे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और इस पर काम किए जाने की जरूरत है। तो खासकर यूं कह लीजिए कि अमेरिका का इस तरीके का स्टेटमेंट देना इस सम्मेलन के बारे में मायने रखता है। देखिए चाहे आप उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, अमेरिका को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो मित्रों ये जलवायु सम्मेलन के बारे में कुछ बातें थी। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ और वह है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स पर आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने कुछ चर्चा आपसे की थी, और खासकर मेरी जो कल की चर्चा थी वो पैटर्न के ऊपर था। और याद रखिए कि वो पैटर्न केवल कॉरपोरेट टैक्स का ही पैटर्न नहीं था, बल्कि सच पूछे तो कॉरपोरेट टैक्स के पैटर्न के माध्यम से किसी भी टॉपिक को आप किस तरीके से तैयार करेंगे, किया जाना चाहिए, उसके पैटर्न की मैं आपको जानकारी दे रहा था। और मैंने जो ये पैटर्न दोस्तों निकाला है, अभी जो एग्जाम हुए हैं मेंस के, उसको देखते हुए निकाला है, बहुत सोच समझ कर निकाला है। तो मैं उसी पैटर्न के तहत अब आपसे कॉरपोरेट टैक्स के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। देखिए सिविल सर्विस की जब आप तैयारी करते हैं तो जो इन्फॉर्मेटिव जो तैयारी होती है उसका बहुत थोड़ा सा रोल रह गया है। कितना रोल रह गया है, ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया है, नॉट एट ऑल, क्योंकि जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप एनालिसिस कैसे करेंगे, उस टॉपिक के बारे में अपनी राय कैसे जाहिर कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये पूछा गया, सामान्य तौर पर पूछ लिया गया कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी किए जाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा या अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा गति मिल जाएगी, क्या आप इससे सहमत हैं। अब उन्होंने पूछ दिया क्या आप इससे सहमत हैं, तो देखिए आपको कॉरपोरेट टैक्स के बारे में मालूम होना चाहिए और फिर उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। भारत ने जो अभी कॉरपोरेट टैक्स कम किया है, अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे इसका मतलब है कि आपको बातें मालूम है। तो लिखते समय आप बाकायदे अपना जो भी व्यू पॉइंट हो उस पर उसको आधार बना करके अपनी बात कह सकते हैं। ये बहुत ही आप यूं कह लीजिए कि एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, ऐसा नहीं कि पहली बार इस पैटर्न की जरूरत है, पहले भी इसी तरह की जरूरत होती थी, लेकिन अभी खासकर जो सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर है आपके जनरल स्टडीज का, उसको देखते हुए मुझे लगा कि अब इस पैटर्न की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, राइट। तो अब आप देखिए कि अब जो जरूरत पड़ रही है उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे। दोस्तों कल के अब अपने लेक्चर को मैं ऐड करते हुए अब आगे अपनी बात कह रहा हूं। तो अब सीधी सी बात है कि कॉरपोरेट टैक्स आपने बढ़ा दिया, कॉरपोरेट टैक्सेस बढ़ाने के बाद अब कुछ उम्मीदें की जा रही हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। मैं इम्पैक्ट के बारे में अभी आपको 5-6 पॉइंट दूंगा, लेकिन इससे पहले आइए मैं इसकी जो रीढ़ की हड्डी है कॉरपोरेट टैक्स की, उसको बहुत सरल भाषा में आपके सामने रख दूं। देखिए कॉरपोरेट मैं बता चुका हूं क्या है, एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए कि कंपनी है, वो कमाई करती है, मान लीजिए कि वो 100 करोड़ रुपए अर्न कर रही है, उसका प्रॉफिट है, तो 100 करोड़ अगर वो अर्न कर रही है तो अभी उसको जो कॉरपोरेट टैक्स के रूप में देना पड़ता था मान लीजिए कि 35 करोड़ रुपए, 100 करोड़ में से 35 करोड़ रुपए वो कॉरपोरेट टैक्स दे देती थी, उसके पास कितना बचा, 65 करोड़ रुपए, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया, ये मैं केवल एक समझाने के लिए आंकड़े का प्रयोग कर रहा हूं। सरकार ने कहा कि नहीं अब आपको 35 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे, अब आपको 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 35 करोड़ की जगह 25 करोड़ रुपए, 10 करोड़ कारपोरेट के पास बच गए, कंपनी के पास बच गए, यानी कि कंपनी को बचत हो गई। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को अब सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अपने दिमाग को घुमाइए कि अगर कंपनी के पास ये जो 10 करोड़ रुपए बच रहे हैं, देखिए मैंने तो केवल 100 करोड़ की बात कही है, कंपनियों को तो पता नहीं कितना टैक्स देना पड़ता है। आप सोचिए कि कॉरपोरेट टैक्स कम करने के कारण ही सरकार को लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, मतलब इतना कम टैक्स मिलेगा, लगभग 1.46 कुछ ऐसा है, लेकिन चलिए हम मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार के खजाने में कम आएंगे। इसलिए एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि सरकार इसकी भरपाई कहां से करेगी। खैर चलिए, अब आप देखिए कि आपके पास ही मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए आप कमाते थे और उसमें से पहले तो आप 35 करोड़ दे देते थे, अब आपको 25 करोड़ देना पड़ रहा है, तो अब आपके पास 10 करोड़ रुपए बच गए और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे इस 10 करोड़ का? तो अब इससे क्या होगा कॉरपोरेट टैक्स से, मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं और अब बस आप उस 10 करोड़ रुपए का क्या करेंगे उसका उपयोग करते जाइएगा इस पॉइंट से जोड़ जोड़ करके, तो आप देखें कि चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती चली जाएंगी। मैं यहां उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपकी अपनी कैपेसिटी डेवलप हो, आपके अपने पैरों में ताकत आए ताकि आप बिना किसी बैसाखी के खड़े हो सके। सिविल सर्विस की यही रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैं केवल कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूं और आप जोड़ जोड़ करके कीजिएगा कि 10 करोड़ रुपए कॉरपोरेट के पास बच गए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। पहला कि इससे लोगों को, आप सुन रहे हैं ना कि नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, इससे जो नौकरी निकाले जाने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। एक अखबार ने सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, नौकरी से निकाले जाने का खतरा कम हो जाएगा, पहला। सेकेंड पॉइंट है कि बैंकों से जो कर्ज लिया गया था वो कर्ज बैंकों को वापस दिया जाने लगेगा, यानी कि बैंकों के पास जो कर्ज दिया गया पैसा था वो वापस लौट कर आएगा। जब वापस लौट करके आएगा तो बैंक और कर्ज दे सकेंगे। तीसरा है कि कंपनियां जो हैं, जो पैदा जो उत्पादन करती हैं जिन चीजों का, उनकी वो कीमतें कम कर सकती हैं कॉरपोरेट टैक्स कम होने के कारण। जब कीमतें कम होंगी तो देखिए पूरा का पूरा साइकिल हो जाएगा, इस पर तो हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं। जब कीमतें कम होंगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसे खरीदेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, जब ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, उत्पादन के लिए कंपनियां नए नए फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, उसमें नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये तो पूरा का पूरा साइकिल है। तो तीसरा पॉइंट है कि जो कंपनियां हैं वो उत्पादन घटा सकती हैं। चौथा है कि जो स्टार्टअप है वो नए नए शुरू होंगे, और ये थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए दो तरह के कम किए गए हैं कॉरपोरेट टैक्स के, अभी जो लोग कम जो कंपनियां हैं उनको 25% या 25% चलिए देना होगा, लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि जो कंपनियां अक्टूबर से बनेंगी नई कंपनियां उनको और भी कम देना होगा 17% के आसपास, उनको तो और भी कम देना है तो स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनियों के विस्तार से रोजगार बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी कंपनियां भारत आ सकेंगी। इस पर सोचेगा कि विदेशी कंपनियां कैसे भारत आ सकेंगी। वैसे मैं एक पॉइंट यहां आपको और बता दूं कि जो थाईलैंड है और जो वियतनाम है वहां कॉरपोरेट टैक्स हमारी तुलना में भी कम है, लेकिन अब अंतर बहुत कम रह गया, थोड़ा सा कम रह गया। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन में जो ट्रेड वार चल रहा है, तो जो अमेरिकन कंपनी है वो चीन को छोड़ रही है, अब उनको नई जगह की तलाश है, तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये हो सकता है कि चूंकि भारत ने अब अपना कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया है, तो जो अमेरिकन कंपनी चीन छोड़ रही है वो सोचे कि चलो यार भारत चलो, अब वहां कॉरपोरेट टैक्स कम हो गया है, तो उस थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात नहीं आती। तो विदेशी कंपनियां भारत आ सकेंगी। और लास्ट है कि अभी त्योहार का सीजन है तो इससे सेंटिमेंट सुधरेगा, तो चलिए इसको तो आप किनारे कर दीजिए, तो बहुत ही टेम्परेरी है। शुरू के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, अब आप इन पॉइंट्स को इस आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक कॉरपोरेट है जो 100 करोड़ रुपए साल में कमाती है, वो अभी तक 35 करोड़ रुपए टैक्स दे रही है, अब उसको 35 करोड़ की जगह 25 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपए उसके पास बच गए हैं, तो अब इसका क्या इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा? प्लीज इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करें, आप देखेंगे कि इससे धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। और अब मैं स्वागत कर रहा हूं अपने उन एक स्टूडेंट का जिन्होंने 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। इनका नाम है रूपाली सिंह परिहार, आप सतना मध्य प्रदेश से हैं। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको जिन्होंने ईमेल के जरिए अपने विचारों से मुझे अवगत कराया है। और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं नूरी परवीन, आयुष मिश्रा, मंजू यादव निवराना राजस्थान से और साक्षी शर्मा। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।